أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار له مواقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال یہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے دس سورہ الرات کی دسویں اور بارہویں آیات ہیں اور پہلے بھی گزشتہ دو خطبات کے موقع پر میں انہیں کی تلاوت کرتا رہا ہوں آج خصوصیت سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اقتباسات کے حوالے سے میں ان کی تلاوت کی ہے جن کے متعلق میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات جو اس آیت کی تفسیر میں آپ نے لکھے ہیں بیان فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا عالم الغیب والشہادہ وہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادت کا بھی الکبیر المتعال کبیر ہے اور متعال ہے عالم الغیب والشہادہ کا ایک تعلق اس کے الکبیر اور اس کے المتعال ہونے سے ہے جس کے متعلق اشارتاً میں نے پہلے ذکر کیا تھا لیکن اس طرز بیان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہی ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور وہی ہے جو غیب کو بھی جانتا ہے بندوں کو نہ تو ظاہر کا کچھ علم ہے نہ غیب کا کچھ علم ہے اور چونکہ علم سے ہی کبر اور علم ہی سے بلندی عطا ہوتی ہے تمام سر بلندی علم کے نتیجے میں ہے تمام عظمت علم کے نتیجے میں ہے اس لیے نہ انسانوں میں کوئی کبیر ہے نہ انسانوں میں کوئی متعال ہے اگر کبیر ہے تو اللہ کی ذات ہے اگر متعال ہے تو اللہ ہی کی ذات ہے اور جہاں تک بندوں کا تعلق ہے وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں جو ظاہر کرتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں سب برابر ہیں اس کی نظر میں من اسر القول ومن جہر به خواہ وہ بلند 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 آواز میں اونچی اونچی باتیں کرے اور اپنے بلند بانگ ارادوں کا اظہار کرے یا دعوی کرے یا کوئی مخفی باتیں دل میں چھپائے پھیرتا ہو تو میں خدا کی نظر میں سب برابر ہیں ومن هو مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار, اور جو رات کے پردوں میں چھپتا پھرے اور دن کو کھلم کھلا باہر نکلے, ان دونوں کی حقیقت کو بھی وہی جانتا ہے. اور ان سب کے لیے ہر حال میں خدا ہی کی تقدیر سے تابع مقرر کردہ ایسے محافظ ہیں جو ان کی حفاظت فرما رہے ہیں. اور اگر خدا کی حفاظت نہ ہوتی تو نہ رات کو زندگی کا قیام ممکن تھا, نہ دن کو زندگی کا قیام ممکن تھا. وہ اللہ کی حفاظت کی تقدیر کے تابع ہی جو آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے ساتھ جاری ہے, ان کو ہر لحظہ موت سے بچا رہا ہے. آواز میں میرا خیال ہے پہلے شاید آواز نہیں آ رہی تھی یا کم آ رہی تھی, جو اب اونچا کیا گیا ہے اب نہیں آ رہی. جو چھیڑنے والے ہیں نا بیچ میں, وہ زیادہ ہی چلاکیاں کرتے ہیں. کبھی اونچا کیا, زیادہ اونچا ہو گیا تو پھر ایک دم بند کر دیا. اب یہ بند کرنے والا حال ہے. ٹیلی ویژن پہ بھی نہیں جا رہی, بند جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کسی کو سمجھدار آدمی کو کہیں ہلکے ہاتھ سے اس کو اونچا نیچا کرے. تجھے اب آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں آ رہی. لاؤڈ اسپیکر کا نظام الگ ہے اور ٹیلی ویژن کا الگ ہے, اس کو ایک کرنا پڑے گا ورنہ یہ دخل اندازیاں رہیں گی. اور لاؤڈ اسپیکر میں جب بدنظمی ہوگی تو لازماً باہر کی دنیا پر بھی اس کا بد اثر پڑے گا. ٹیلی ویژن پہ بھی تو یہ باتیں پہنچ رہی ہیں, یہاں کیا ہو رہا ہے. اس لیے آپ شاہ صاحب کو میں مخاطب ہوں, سید رشید شاہ صاحب کو, کہ آپ اس انتظام کو بھی سنبھال لیں اور ایک ہی نگران دونوں کا ہو. ٹھیک ہے, ابھی تک ڈیڈ ہے بالکل. کوئی پتہ کرے جا کے کیا تماشا بنایا ہوا ان لوگوں نے. اگر تعلق نہ ہوتا تار کا تو پھر ایک دم اونچی آواز کیسے آتی؟ وہیں چھیڑا کسی نے. جو لاؤڈ اسپیکر کنٹرول سسٹم ہے اس کو ضرورت سے زیادہ چھیڑ دیا اور پھر واپس کیا تو اور ہاتھ پاؤں مارے گئے ادھر ادھر. میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے افراتفری میں ہاتھ پاؤں مار کے خراب کر دیا ہے. آپ جا کے دیکھیں, اس کو ٹھیک کروائیں. اب الگ یو کے کا کوئی نہیں ہوگا, جہاں میرا خطاب ہوگا وہاں مرکزی نظام کے تابع ہوگا. ہمیشہ اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. مجھ تک آتی ہے بات صرف. کیا ذرا ہے ہی نہیں, ورنہ یہاں سے فیڈ بیک آ جاتا ہے بولنے والے کو, فوراً پتہ چل جاتا ہے. یہ آواز یہاں سے پہنچ رہی ہے آپ کو, سمجھے؟ جی نہیں ہو سکتا. ٹھیک, وہ تو مجھے پتا ہے, میں پہلے بھی کہی سکے. جی نہیں نہیں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں ایک طرف. اچھا بس پھر ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو پورا انتظام سنبھال کے پھر مجھے بتانا. اب آواز آ رہی ہے اس میں, اب بند ہو گئی. وہ کنیکشن ٹوٹا ہوا سا ہے, کبھی لگ جاتا کبھی نہیں لگتا. مائکرو فون بدلنے سے شاید ٹھیک ہو. ہاں بڑی آواز آئی ہے نکلنے کی. गलत जगह लगी हुई थी, टूटी है, काम से नहीं कर रहे दोनों। ठीक है, अब आवाज आ रही है ना। मैं बयान कर रहा था कि कुरान करीम में जहाँ आलिमुल गैब व शहादा का मज़मून है, वहाँ ये भी है कि तुम्हें जब कुछ किसी हाल का इलम नहीं, ना जाहिर का ना गायब का, तुम अपनी हिफाजत का क्या इंतज़ाम कर सकते हो, कुछ भी नहीं। और जो अंदरूनी खतरात हैं और अक्सर अंदरूनी हैं, और जो मख्फी खतरात हैं और अक्सर मख्फी हैं, उनसे इंसान के अंदर मुकाबले की ताकत ही नहीं, क्योंकि इल्म के बगैर मुकाबला मुमकिन नहीं। तो अल्लाह ताला ने जहाँ जिस जिस पहलू से इंसान को किसी इल्म से महरूम रखा है, वहाँ उसकी निगरानी की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। बस ये ताल्लुक है इस मज़मून का, लहू मुअक्किबातुन मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिहि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाहि, कि इंसान के आगे और पीछे खुदा के हुक्म से ऐसे करिंदे चलते हैं जो उसकी तकदीर से, उसी के हुक्म से हिफाजत कर रहे हैं। वरना मौत की तकदीर भी खुदा ही की है, ज़िंदगी की तकदीर भी खुदा ही की है। इस ताल्लुक में नेकी को छुप कर करना और नेकी को ऐलानिया करना, ये वो मज़मून है जिसके मुतल्लिक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने रोशनी डाली है, और बहुत ही गहरी वो हिकमत नसाहत पर मुश्तमिल ये मज़मून है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। यानी इस आयत करीमा के बहुत से पहलू हैं, बेशुमार ऐसे हैं जिन पर एक वक्त में इकट्ठे रोशनी डालना तो दरकिनार, उसका जिक्र भी मुमकिन नहीं है। बहुत ही वसी मज़ामीन पर फैली हुई ये आयात हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नेकी के छुपाने और नेकी के ज़ाहिर करने के मज़मून को खसूसियत से पेश नज़र रखा है। फरमाते हैं, बस मोमिनों की भी दो ही किस्म की ज़िंदगी बसर करने का हुक्म है, मोमिनों को भी दो ही किस्म की ज़िंदगी बसर करने का हुक्म है, सिर्रम व अलानियतन, या वो मख्फी ज़िंदगी बसर करेंगे या खुली खुली अलानिया ज़िंदगी। बाद नेकियाँ ऐसी हैं कि वो अलानिया की जावें, और उससे गरज यह है कि ता इसकी वजह से दूसरों को भी तहरीक हो। अलानिया नेकी में एक हिकमत यह है ताकि लोगों को भी तहरीक हो, वरना मख्फी नेकियां हर इंसान की ज़ात में डूबी रहेंगी और मुआशरे में अमूमन नेकी में आगे बढ़ने की तरफ तवज्जो पैदा नहीं होगी। और इससे गरज यही है कि ता दूसरों को भी तहरीक हो और वो भी पढ़ें इससे पहले एक सतर छूट गई थी, नमाज का जिक्र चला है इसलिए समझ नहीं आ रही थी। इबारत यूँ है कि गरज यह है कि ताज की वजह से दूसरों को भी तहरीक हो और वो भी वही नेकियां करें, यानी वही करें। जमात नमाज यानी बाद जमात नमाज अलानिया ही है, और इससे गरज यही है कि दूसरों को भी तहरीक हो और वो भी पढ़ें, और सिरन इसलिए कि ये मुखलिसीन की निशानी है जैसे तहज्जुद की नमाज है। यहाँ तक भी सिरन नेकी करने वाले होते हैं कि एक हाथ से खैरात करे और दूसरे को इल्म ना हो, और इससे बढ़कर इखलासमंद मिलना मुश्किल है कि नेकी को अमदन इतना छुपाए गोया उसके वजूद के दूसरे हिस्से को भी उस नेकी की खबर ना हो। इंसान में यह भी एक मर्ज है कि वो जो कुछ खर्च करता है वो चाहता है कि लोग भी उसे समझें, से मुराद ये है कि उसके खर्च के मामलात पर लोगों की भी नज़र हो। ये समझें का मज़मून या तो कोई गलत लिखा गया है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बाज़ दफ़ा बाज़ अल्फाज़ को ज़्यादा वसी मानों में इस्तेमाल फरमाते हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल से हटकर होता है। जो अल्फाज यहाँ लिखे हैं वो यही हैं, ये भी एक मर्ज है कि जो कुछ खर्च करता है वो चाहता है कि लोग भी उसे समझें, शायद मुराद ये हो कि लोग भी उसे कुछ समझें, उसको इज्जत दें, उसको मर्तबा दें। मगर मैं खुदा ताला का शुक्र करता हूँ, ये है वो असल बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इस इबादत को चुना है। आपसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को क्या तवक्को है और आपके मुताबिक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कितनी गहरी दिली रजामंदी का इजहार फरमाया है। मगर मैं खुदा ताला का शुक्र करता हूँ कि मेरी जमात में ऐसे भी लोग हैं कि जो बहुत कुछ खर्च करते हैं मगर अपना नाम तक जाहिर नहीं करते। बाद आदमियों ने मुझे कई मरतबा पार्सल भेजा है और जब उसे खोला है तो अंदर से सोने का टुकड़ा निकला है या कोई अंगुष्ठरी निकली है और भेजने वाले का कोई पता ही नहीं। किसी इंसान के अंदर इस मरतबा और मकाम का पैदा होना छोटी सी बात नहीं, और ना हर शख्स को यह मकाम मुयस्सर आता है। ये हालत उस वक्त पैदा होती है जब इंसान कामिल तौर पर अल्लाह ताला के वजूद और उसकी सिफात पर ईमान लाता है और उसके साथ उसे एक साफी ताल्लुक पैदा होता है। दुनिया और उसकी चीज़ें उसकी नज़र में फना हो जाती हैं। यह है सिरन का मज़मून जो बहुत ही गहराई में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। बसा औक़ात इंसान नेकी करता है, उसे दिखावे का तो ख्याल नहीं होता लेकिन बिल इरादा इख़फ़ा का भी कोई तरीक़ इख्तियार नहीं करता। ऐसे लोगों पर कोई हरफ नहीं है क्योंकि छुपाना भी एक ज़हमत है, और कोशिश करके किसी चीज़ को छुपाना किसी गैर मामूली इरादे की बिना पर की बग़ैर पैदा नहीं हो सकता, वरना ये नॉर्मल नहीं है, ये आम तरीक नहीं है इंसानी। एक इंसान रिया से पाक नेकी करे उसे कोई परवाह नहीं होती वो देखता या नहीं देखता। और इसी ताल्लुक में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खुद अपना भी एक तजर्बा बयान फरमाया है। किसी ने आपसे पूछा कि आप जब नमाज पढ़ते हैं और ख़ास कैफियत तारी होती है, लोग देख रहे होते हैं, तो आपको कभी ख्याल नहीं आता कि वो लोग मुझे देख रहे हैं? आपने फरमाया जैसे इंसान तवीले में नमाज पढ़े, इर्द गिर्द घोड़े बंधे हों तो किसी को ख्याल आएगा घोड़े देख रहे हैं? वह मुगमान में भी नहीं ये बात आती कि कोई देख रहे, क्योंकि मेरी नमाज का उनसे ताल्लुक ही कोई नहीं, जिसके साथ है वो देख रहा है और उसी का ख्याल ऐसा गालिब हो जाता है कि किसी और तरफ तवज्जो जाती ही नहीं। तो ज़रूरी नहीं कि हर नमाज को छुपा कर ही पढ़ा जाए तो वो सिर्री नमाज बनेगी वरना आलानिया हो जाएगी। ये मज़मून भी समझने से ताल्लुक़ रखता है। हर चीज़ जो ज़ाहिर है वो ज़ाहिर नहीं है, बाज़ दफ़ा सिर्री होती है और उसके अंदर सिर होते हैं। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो नमाज लोग देखते थे और वो नमाजें जो दूसरों की देखते थे, बज़ाहिर तो उनमें फ़र्क नहीं था। अगर खुशू व खुजू है तो बाज़ दफ़ा गैरों में भी बड़े ज़ोर से खुशू व खुजू पैदा होता है, मगर ये सिर्री कैफियत कि परवाही कोई नहीं, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, उनकी हैसियत हकीकत ही कोई नहीं है। जिसने देखना था वो जानता है और वही मेरे लिए काफ़ी है। ये भी एक सिर है जो अलानिया नमाजों में भी पैदा हो जाता है, और नेकी का भी यही हाल है। बाज़ दफ़ा एक इंसान चंदे लिखवाता है, चंदे अदा करता है, नाम उसके नाम रसीदें कटती हैं, और अक्सर यही होता है क्योंकि हमने चंदे के निज़ाम की भी हिफाजत करनी है, मगर देने वाले के जहन में किसी तरह भी किसी किस्म का कोई रिया का पैदा नहीं होता। मगर इसके बावजूद कुछ ऐसे भी हैं जो मेहनत करके अपनी नेकी को खुद अपनी ज़ात से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। ये जो फरमाया कि दूसरे हाथ को खबर नहीं होती, ये बहुत अहम मज़मून है, ये कोई मुबालगा अमीजी नहीं है, वरना लफ्ज़न तो एक हाथ से आप नेकी करें तो दूसरे हाथ को ज़रूर खबर होगी क्योंकि आप एक ही वजूद के हिस्से हैं। मगर ये जो मज़मून हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने गुशाक के हवाले से बयान फरमाया, कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि ऐसे ऐसे भी उनमें हैं कि मुझ तक से नाम छुपाते हैं। और मोमिन का अपने आखा से उतना भी नहीं फर्क होता जितना एक हाथ का दूसरे हाथ से होता है। बस एक हाथ से नेकी करना और दूसरे हाथ से छुपाना, इससे बेहतर अंदाज में जाहिर नहीं फरमाया जा सकता कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी लोग बाज़ दफ़ा जेवरात भेजते थे और खुद आप पर भी नाम जाहिर नहीं करते थे, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो आप पर जरूर जाहिर करते थे। और दोनों बातें इख्फा में हैं, जिसने नहीं जाहिर किया उसने अपने पर एतमाद नहीं किया, ये नहीं कि मसीह मौऊद पर एतमाद नहीं था, उसने अपने पर एतमाद नहीं किया, उसको ये यकीन नहीं था कि अगर मैंने मसीह मौऊद पर भी नाम जाहिर कर दिया तो शायद मैं अपने नफ्स की अना की प्यास बुझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। और दिल चाहता था कि मैं मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर अपनी नेकी को जाहिर करूं ताकि दुआएं भी हासिल करूं, लेकिन दुआओं के साथ जहां नफ्स की मिलौनी का खतरा हुआ वहां नतीजा ये निकलता है कि ऐसे करने वाले को खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं था। और एतमाद ना होने के नतीजे में उसने अपने हाथ से अपनी अना की गर्दन पर छुरी फेरी है, गोया अब कोई इम्कान बाकी नहीं रहा कि मेरी अना किसी तरह भी खुश हो सके। इसलिए यह कुर्बानी तो जरूर खालिसत अल्लाह के लिए होगी। ये वो मजमून है जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक ही तहरीर में एक बात बयान फरमाकर उसका एक पहलू रोशन फरमाया और इस बात से पर्दा उठा दिया कि कैसे एक हाथ की नेकी का दूसरे हाथ की नेकी की दूसरे हाथ को खबर तक नहीं होती। फिर ऐसे भी हैं जो ये इस गरज से करते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे और खुदा के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक कायम हो जाए कि उसके अंदर किसी इंसान का कोई वास्ता न रहे, और ऐसा करते हुए वो अब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से जब नाम छुपाते थे तो किसी तकब्बुर की बिना पर नहीं कि मेरा खुदा से बड़ा रास्ता लुक है, बल्कि खुदा की तवज्जो अपनी तरफ फेरने के लिए कि मैं भी एक तरह बंदा हूं, मेरी नेकी बरह रास्त कुछ तक पहुंचे और किसी और का दखल ना हो। ये मजमून है जो ऐन ऐसे बारीक किनारे पर खड़ा है कि गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अगर गलत हो तो ऐसा आदमी ठोकर खा के गिर भी सकता है, अगर सही हो तो बहुत बुलंद मकाम तक उसको पहुंचा देता है, और गिरता है तो खुदा की झोली में गिरता है। तो इस पहलू से सिर का मजमून बहुत ही गहरा और बारीक है, और जब तक हम इस मजमून को न समझें ज़्यादा तरक्यात नहीं कर सकते, क्योंकि सिर के अंदर जो अंधेरे हैं वो अपनी ज़ात की राह में भी हायल होते हैं। सिर को पहचानना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए जो अपनी नीयतों को टटोलता रहता है उसे रफ्ता रफ्ता वो बसीरत अता होती है, जैसे अंधेरे कमरे में रहने के आदि की आंखों को अता होती है, वो आंखें रफ्ता रफ्ता खुल जाती हैं, और बहुत मध्यम रोशनी भी हो तो उसमें भी कुछ दिखाई देने लगता है। मगर जिनकी आंखें हमेशा बाहरी खुली रहें उनके वो नफ्स के अंधेरों में कुछ दिखाई नहीं देता कि नीयतों का आगाज अना से हुआ था या रजाए बारी ताला की खातिर कुर्बानी से हुआ था। बस ये वो सिर का पहलू है जिस पर जमात को गौर करते रहना चाहिए, और जब तक ये मुहावरा ना हो जाए कि हम अपनी नीयतों को खूब पहचान लें और हमारी नीयतों के गिर लिपटे हुए कोई पर्दे हायल ना हो हमारी नजर के दरमियान और उस नीयत के दरमियान, उस वक्त तक कल्ब की सफाई मुमकिन नहीं है। जब सफाई हो जाए फिर वो मकाम आता है जिसका हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाया है कि अब ये बातें खत्म हो चुकी हैं, पुरानी बातें रह गई हैं, कोई देखता है कि नहीं देखता, इनसे मेरी तवज्जोहात का मज़मून बहुत बाला हो चुका है। बस वहां तक पहुंचने के लिए ये बीच की मनाजिल हैं, इसलिए हर इंसान को अपनी नीयतों पर नजर रखना, خواب و عبادت کے تعلق میں ہوں، خواب و مالی قربانی کے تعلق میں ہوں، یا وقت کی قربانی اور خدمات کے تعلق میں ہوں، نہایت ضروری ہے. اور خطرات اس وقت درپیش ہوتے ہیں جب غیر کی تحسین کی آوازیں آنے لگتی ہیں. وہی وقت ہے جو ایک قسم کی تمانیت کا وقت بھی ہے اور خطرات کا وقت بھی ہے. اور یہ بھی ایک ایسا مضمون ہے جہاں اس سے مفر کوئی نہیں، بھاگ سکتے ہی نہیں ہیں. اب ہم جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں ان پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں، اور عمرا بھی نہ صرف نظر رکھتے ہیں بلکہ شکریوں کی چٹھیاں لکھتے ہیں اور مجھے بھی ساتھ بھیجتے ہیں. امیر صاحب یو کے کی بہت سی چٹھیاں میرے پاس آتی ہیں، جو نقول ہیں ان لوگوں کے نام لکھی ہوئی چٹھیوں کی جن کو یہ لکھا گیا کہ آپ کی مالی قربانی جس انداز سے آپ نے کی، جس پیار و خلوص سے کی، وہ ہم تک پہنچی اور درج ہوئی. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے جنہوں دنیا کی حسنات سے نوازے. غرض کے غرضی کے اسی قسم کا مضمون ہے تو سب لکھنے والے لکھتے ہیں اور مجھے بھی چٹھی بھیج دیتے ہیں. اور مجھے جو چٹھی بھیجنا ہے اس نیت سے نہیں کہ دیکھو ہم کتنی عمدگی سے اور فوری کام کر رہے ہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اس غرض سے بھیجتے ہیں کہ جو دعائیں ان کے دل سے ایک اچھے خدمت کرنے والے کے لیے اٹھی ہیں وہ میرے دل سے بھی اٹھیں. اب لکھتے ہیں ہم تو ان تک بھی آواز پہنچتی ہے کہ میری نیکی محسوس کی گئی ہے، ان کے نفس کو بھی ایک تمانیت نصیب ہوتی ہے. اور یہ وہ تمانیت ہے جو خطرے میں بھی پر بھی منتج ہو سکتی ہے. اور یہاں لازم ہے کہ ہم اس خدا کی پناہ مانگیں جس کی طرف سے موقعات من بین یدیہ و من خلفہ مقرر ہیں کہ ہمیں ہر قسم کے خطرات سے بچاتے رہیں. تو نیکی کا مضمون جتنا گہرائی میں جا کر دیکھا جائے اتنا ہی زیادہ باریک سے باریک تر ہوتا چلا جاتا ہے اور بہت رفتوں میں جا پہنچتا ہے. جتنی گہرائی ہے اتنی ہی رفتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس پر ان رفتوں کے سمجھنے کے نتیجے میں پھر انسان کو رفتیں نصیب ہوتی ہیں. ان کو سمجھے بغیر نیکی کے عام پھل تو اسے ملیں گے، مگر وہ پھل جو لامتناہی ہیں وہ پھل ان کے حصے میں آتے ہیں جن کی نیتیں لامتناہی طور پر خدا کے لیے وقف ہو چکی ہیں. بس خرچ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. جس نے 10 روپے چندہ دینے کی توفیق پائی ہے اپنی توفیق کے مطابق وہ 10 ہی دے سکتا ہے. جس نے لاکھ یا کروڑ کی پائی ہے اس نے بھی توفیق کے مطابق ایسا کیا، مگر نہ 10 کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے ہاں غیر معمولی مقبولیت پا گیا، نہ کروڑ کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے ہاں غیر معمولی مقبولیت پا گیا. خدا کے ہاں ہنسے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ آخری نیت ہے جس پر خدا کی نظر ہوتی ہے. غربت اور امارت کی تفریق مٹ جاتی ہے. ہر پیش کرنے والا برابر ایک صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. بس ان معنوں میں وہ آیت ایک مضمون پیش کر رہی ہے، سواؤں من کم من اسر القول و من جہر علیہ. اب خدا کے حضور تم سب برابر ہو گئے ہو، ہاں تم نے بڑھ بڑھ کے چندے پیش کیے یا چھپ چھپ کے کیے، لازم نہیں کہ چھپا ہوا آگے بڑھ گیا ہے، کیونکہ چھپے ہوئے کی نیکیوں میں بعض چھپی ہوئی بدیاں بھی داخل ہو جاتی ہیں، اور علانیہ نیکی کرنے والے کے اندر بھی بعض اخفا کے ایسے پہلو ہیں جن پر خدا کے سوا کسی کی نظر نہیں. بس یہ عجیب مضمون ہے کہ امیر اور غریب، ظاہر اور مخفی سب برابر ہو جاتے ہیں خدا کی نظر میں، اور وہی ایک ہے جو جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے، کس حد تک ہے. اور اگر ہم محنت کر کے اپنی نیکیوں کو خدا کے لیے خالص کرنے کی کوشش شروع کر دیں تو یہ زندگی بھر کا سفر ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آج آپ کے دل میں خیال اٹھا اور کل وہ بات ختم ہو گئی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے پر یہ مضمون حاوی ہے، اور تمام زندگی ختم نہیں ہو سکتا. उसकी वजह यह है कि हर रोज हम कुछ ना कुछ करते हैं और जो भी करते हैं उसमें हमारी नीयतें शामिल होती हैं खुदा के लिए या गैरुल्ला के लिए काम करने की। अपने बच्चों को पालते हैं, अपनी बीवियों की जरूरत को पूरा करते हैं, अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं, ताल्लुकात के दायरे में जकड़े हुए हम आगे चलते हैं और हर ताल्लुक के दायरे के अंदर खुदा तआला मौजूद है जो हमें दिखाई नहीं देता। अगर उसकी तरफ ध्यान जाता है और वो एक मौजूद हकीकत के तौर पर हर ताल्लुक के दायरे में दिखाई देने लगता है तो ये वो है जो इस दुनिया में बका नसीब हो जाती है और बाकी और लाफानी से एक ताल्लुक शुरू हो जाता है। और फिर हर ताल्लुक के वक्त इंसान अपने से बेहतर इंसान उस इंसान से बेहतर जिसने ये बातें महसूस की हैं सवाए खुदा के और कोई नहीं समझ सकता कि उसने खुदा की मौजूदगी को कैसा पाया, क्या खुदा की मौजूदगी के नतीजे में उसे कोफ्त हुई और तबीयत मुकद्दर हुई और उसका लुत्फ जो था वो कुछ बकपका सा हो गया, या खुदा की मौजूदगी के ख्याल से उसके लुत्फ में एक मजीद चमक पैदा हो गई और उसका लुत्फ एक आसमानी नौयत का नाकाबले बयान लुत्फ बन गया। ये दो इंतहाएं हैं जिनके दरमियान हर मोमिन का कदम या एक इंतहा के करीब है या दूसरी इंतहा के करीब है। अल्लाह मुतना ही है ये नमाज़े। एक मुब्तदी जो सफर करता है वो पहली जो हालत है उसके करीब रहता है, यानी खुदा का तसव्वुर तो उठता है बार बार लेकिन घबराहट पैदा होती है कि ये मेरे दुनिया के ताल्लुकात इसके मजे में अब मैं खुदा का मजमून दाखिल करूं तो ये मजा किरकिरा हो जाएगा। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते गुफ्तगू में या खामोशी में हर हाल में इंसान पर ये कैफियत तारी हो सकती है कि वो खुदा की हस्ती का तसव्वुर बांधे और वो तसव्वुर या अजनबी लगे या ऐसा तसव्वुर हो जिसकी तलाश थी जो एक खला को भर देने वाला हो। ये जो आखिरी बात है ये आसान नहीं है और महज ये कह देना कि खुदा सबसे प्यारा है बिल्कुल गलत है जब तक प्यारा बन के ना दिखाए, और प्यार यूं ही पैदा नहीं हो जाया करते। इंसान से हमारे प्यार जो हैं वो ताल्लुकात के नतीजे में लंबे अरसे में पैदा होते हैं और अपनायत होकर जब दुई मिटती है तो फिर ताल्लुक एक और मंजिल पे जा पहुंचता है, एक और बुलंदी हासिल कर लेता है। तो खुदा ताला की जात और इंसान की जात में इतना बोध है कि इंसान से ताल्लुक में भी अगर मनाजिल बहुत हैं बीच की और वो आखिरी यकजान होने की मंजिल बहुत बाद में आती है तो खुदा के ताल्लुक में तो बहुत ही मुश्किलात हैं और दुआ के बगैर ये मजमून हल हो ही नहीं सकता, ये सफर तय होना मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि शुरू में तो इंसान की तबीयत ये अजनबियत महसूस करती है कि जब मैं इंसान से प्यार करता हूं, इंसान की खूबसूरती को देखता हूं, उसके एहसानात को देखता हूं तो ये सारी बातें कुर्ब से मालूम हो रही हैं और इसमें हम जिन्स होने की वजह से कोई बोध नहीं, कोई अजनबियत नहीं है, एक तभी चीज है। मगर इस ताल्लुक को अहमियत ना दूं, इसको अदना समझूं और वाकई दिल के वलवले के साथ अपनी मोहब्बतों का मरकज खुदा को बना लूं, ये जब तक हकीकतन उसको समझ ना आए, अगर वो ऐसा दावा करता है तो झूठ बोलता है, ये आसान काम है ही नहीं। क्योंकि जो यकसानियत है जब तक वो ना हो उस वक्त तक मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। सबसे बुलंदतर मोहब्बत वो है जो यकसानियत से पैदा होती है, उसमें फिर कभी कोई दूरी नहीं होती। जो मोहब्बतों का सफर करते हैं आगाज में जो मोहब्बत बहुत ही गैर मामूली तौर पर ताकतवर दिखाई देती है, जब भी उसमें रखना पड़ता है यकसानियत के फुकदान से पड़ता है। मियां और बीवी और कैसे ही प्यार से इकट्ठा जिंदगी का सफर शुरू करें, جوں جوں وقت کے ساتھ مختلف صورتحال پر رد عمل میں اختلاف دکھائی دیتا ہے, جوں جوں نظریات کے اختلاف جو ہیں وہ روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں, وہ جو دخل اندازی ہے وہ محبتوں کے اندر ایک رکھنا ڈالنے والی دخل اندازی ہوتی ہے جو یکسانیت کے فقدان سے پیدا ہوتی ہے, اور رفتہ رفتہ وہی چیز جو پہلے خوبصورت دکھائی دیتی تھی اس کی خوبصورتی کے باوجود اس میں وہ دلچسپی باقی نہیں رہتی, دل پیچھے ہٹ جاتے ہیں حالانکہ جسم وہی رہتے ہیں. تو اس وجہ سے در حقیقت محبت کا فلسفہ ہی یکسانیت ہے, اور جب تک یکسانیت پیدا نہ ہو, اگر جنسیں بھی الگ الگ ہوں تو محبت کا پیدا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ بزرگ جن کا میں ذکر کیا کرتا ہوں, بابا عبدالستار صاحب, بزرگ صاحب کہتے تھے, عبدالستار خان قادیان میں ایک پٹھان مہاجر تھے جو ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے غیر معمولی عشق تھا, اور خدا پرست ایسے تھے کہ جو دل میں دعا اٹھتی, دل سے دعا اٹھتی بہت جلد اس کا جواب ملتا تھا, اور سادہ انسان مگر بہت گہرا اور باریک مزاج. چنانچہ ان کا جو واقعہ میں نے پہلے بھی بارہا آپ کے سامنے رکھا ہے وہ اس موقع پر بھی جسماں ہوتا ہے. انہوں نے ایک دفعہ یہ دعا شروع کر دی کہ اے خدا, اگر میں نے تو ملکہ وکٹوریا کو دیکھا نہیں ہے, اس کا نام سنا ہے, نہ اس کے ساتھ میرا کوئی قومی تعلق ہے, نہ جسمانی طور پر کوئی تحریک میرے دل میں اس کے لیے پیدا ہو سکتی ہے, ہاں اس کی نیکی کے تذکرے سنے ہیں کہ اچھی بادشاہ ہے, تو اگر کوئی مجھے کہے کہ ملکہ وکٹوریا سے عشق شروع کر دو میں کیسے کر سکتا, تو ممکن ہی نہیں, میری طاقت میں ہی نہیں ہے. اور پھر عرض کیا کہ اے خدا, پھر جنسوں کا بھی تو اختلاف ہے, اب کہاں میرا اور ملکہ وکٹوریا کا فرق, کہاں میرا اور تیرا فرق, کوئی نسبت ہی نہیں ہے, جہاں قدر مشترک ہی کوئی نہیں, وہاں کیسے میں تجھ سے محبت کروں, مجھے یہ سمجھا دے. یہ دعا کرتے ہوئے کشفی حالت طاری ہو گئی, اور اس کشفی حالت میں ان کو الہام ہوا, ایک شعر الہام ہوا کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود, تانہ سوزت شمع کہ پروانہ شیدا می شود, کہ پروانہ شیدا می شود, کہ عشق تو پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے, اگر شمع جلے نہیں تو پروانے کو کیا دیوانگی ہے, کیا پاگلپن ہے کہ وہ شمع پر جا کر, بجھی ہوئی شمع پر جا کر اپنی جان نشاور کرے. پروانہ جلتا تو ہے مگر پہلے شمع جلتی ہے, معشوق پہلے جلتا ہے, عاشق بعد میں جلتا ہے. عجیب جواب تھا یہ, اور چونکہ وہ بہت ہی گہرے عارف باللہ تھے, وہ اس مضمون کو سمجھ گئے کہ دراصل خدا سے محبت خدا ہی کی محبت کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے, اور ساری کائنات میں خدا کی محبت کے مظاہر بکھرے پڑے ہیں. کوئی بھی زندگی کا سانس ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان کا مظہر نہ ہو, وہ ہماری طلب کر رہا ہے, وہ ہمیں بلا رہا ہے. تو اس مضمون کو سمجھیں تو پھر ایک یکسانیت مضمون کا آغاز شروع ہو جاتا ہے, پھر جو کچھ وہ ہے ویسا بننے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے, اور اگر خدا محسن ہے اور بندہ محسن بنتا ہے, اور خدا کے احسانات کا دائرہ جو لامحدود ہے اس پر نظر رکھ کر محسن بننے کی کوشش کرتا ہے, تو خدا سے ایک قسم کی یکسانیت پیدا ہونے لگتی ہے, اور پھر خدا کا فضل ہے جو اس کی اس دل کی تمنا کے تیل پر آسمان سے اپنی محبت کا شعلہ برساتا ہے, اور نور علی نور بن کر وہ انسان جو خدا سے کوئی بھی نسبت نہیں رکھتا محبت میں اس کا شریک ہو جاتا ہے. تو شمع پہلے جلتی ہے پروانہ بعد میں, یہ مضمون ہے
कि वो क्षमा रोशन है और उसकी रोशनी सारी कायनात पर फैली हुई है। अल्लाह नूर समावात वाला, उस पर गौर तो करो जब तुम उसके नूर की के पर्दों को देखते हो, जो पर्दों के पीछे है लेकिन पर्दे चमक उठे हैं, तो दरअसल तुम्हें उसी से तो मोहब्बत हो रही है। उनको बीच में हायल क्यों रहने देते हो? हुस्न खा इंसान का हो, खा फूलों का हो, खा पहाड़ों का हो, नदी नालों का हो, या सहराओं का हुस्न, वो भी तो एक हुस्न है। सहराओं का हुस्न हो, हर हुस्न पर जब इंसान गौर करता है तो उसके पीछे अल्लाह ताला का हुस्न का फरमा है। इसी मजमून को बयान करते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चश्मे मस्त हर हसीन हर दम दिखाती है तुझे, हाथ है तेरी तरफ हर गेसु खमदार का। इन हमें तो खूबसूरत आंखें भी तेरी तरफ ले जाती हैं, और उनकी जुल्फें भी खमदार हों भी तो उनका हाथ तेरी तरफ उठता है। ये सारी नज्म इसी मजमून की मजर है कि किस तरह खुदा का हुस्न रोशन हो चुका है और जगह जगह जर्रे जर्रे में रोशन है, और जिधर भी नजर डालो तुम्हें खुदा की मोहब्बत की राहें दिखाई देंगी। लेकिन पहले ये शऊर तो पैदा करो कि हुस्न है क्या और किसका है। इस मजमून में जब तुम दाखिल होते हो तो हर कदम पर इज़्निल्लाह की जरूरत है। अल्लाह के इज़्न के बगैर अगला कदम उठाने की तौफीक दे, वरना इस मजमून में भी हर कदम पर वो खतरात हैं जिनसे बचाने के लिए आयत के इस हिस्से की जरूरत पड़ती है। लहू मुअक्किबातुन मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिहि याहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, क्योंकि ये मजमून बसा औक़ात हकीकत से मजाज की तरफ ले जाता है और इंसान को मजाजी में गर्क कर देता है। और जितने कदम खुदा की तरफ बढ़ने के हैं उतनी ही ठोकरें उस राह में हायल हैं। हर कदम पर एक ठोकर भी है और आगे बढ़ने के इम्कानात भी हैं। तो जिसको सब कुछ दिखाई दे रहा है उसी की तरफ क्यों तवज्जो की जाए। लहू मौक़िबात, उसके पास ऐसे मौक़िबात हैं जो तुम्हारी हिफाजत कर सकते हों, तुम्हारे आगे और पीछे चलें, तुम्हारी नीयतों पर निगरान हो जाएं, मगर अगर उससे मदद मांगते हुए आगे बढ़ोगे तो ये नसीब होगा, वरना नसीब नहीं हो सकता। बाकी जितने दावे करते हैं सब झूठे हैं कि हमने तो खुदा की मोहब्बत को पा लिया है, हम समझ गए, हमने कुर्बानी खुदा की खातिर कर दी। एक आध दफा नीयत साफ करके खुदा की खातिर छुपके की जरूर होगी और बसा औकात इंसान को तौफीक मिलती है, मगर एक कदम ही तो सफर का नाम नहीं। खुदा की तरफ सफर तो लामुतनाही जात की तरफ सफर है। उसका तो हर कदम एक मुश्किल कदम भी है और कदम भी लामुतनाही है, ना खत्म होने वाले कदम है। तो एक आध नेकी करके उस पर खुश हो के बैठ जाना और ये समझ लेना कि हमने सब कुछ पा लिया, ये इंतहाई बेवकूफ़ी है, और इसके नतीजे में जो कुछ पाया है वो भी खोया जाता है। ऐसे ऐसे लोग भी आप देखेंगे जिन्होंने कुछ पाया और उन उस पाने के तकब्बुर ने उनको हलाक कर दिया। बड़े बड़े सर ऊंचा लिए फिरते हैं, कोई एक राज इत्तफाकन मिल गया जो मामूली बात है। आरिफ बिल्ला को तो रोजाना खुदा तआला बेशुमार निकात अता फरमाता है और वो झुक कर कबूल करता है, वहमो गुमान में भी नहीं आता कि मेरी कोई चलाती है। लेकिन ऐसे ऐसे बेवकूफ़ भी आपको नजर आएंगे जो एक बात पकड़ के बैठ गए हैं और बार बार वो पूछते फिरते हैं लोगों से, इसका जवाब दो, या मेरे सवा कोई इसका जवाब नहीं जानता। वो छोटा सा कोई चुटकला बेहकीकत बेमानी और उसी चुटकले के तकब्बुर में मुबतला होकर अगर कोई नेकी थी भी तो भी बर्बाद कर बैठते हैं। कई ऐसे आदमी मेरे से सामने मेरे इलम में हैं, बाजों से मेरी गुफ्तगू हुई, बातों के मुतलिक मुझे बताया गया कि उन्होंने ये सवाल किया, हमने बहुत फिरा है बहुत देखा है, इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। मुराद ये नहीं कि सवाल के जवाब की तलाश है, मुराद ये होती है कि हमें पता है तुम्हें कुछ पता नहीं, और आप लाख उनको समझाने की कोशिश करें वो सिर हिलाते रहेंगे नहीं, असल बात बताएंगे नहीं, होती कुछ नहीं बात। بے حقیقت سی بات ہوتی ہے اور سر پھیر کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے بھی نہیں ملا جواب. ایسے ایک دو آدمیوں سے واسطہ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ ان کی نفسانی حالت کو سمجھتے ہوئے ان کو لوگوں کے سامنے لاجواب کر دیا. بہرحال وہ سر اٹھا کے نہیں واپس جا سکا اور اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ کہہ دے کہ ہاں میری تسلی ہو گئی. تو تسلی بھی خدا کا کام ہے, وہ بھی بندے کے بس کی بات نہیں. حضرت مسلم مولود کی خدمت میں بھی ایک ایسا صوفی پہنچا تھا ایک دفعہ اور بڑے اس نے تکبر کے ساتھ کہا کہ میں چند سوال لے کے آیا ہوں, مجھے جواب دیں آپ فوری طور پر. آپ نے فرمایا بتاؤ. انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ اگر کوئی کشتی پر سفر کر رہا ہو اور کنارہ آ جائے تو کنارے پر پہنچنے کے باوجود کشتی میں بیٹھا رہے, اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کو آپ بے وقوف اور پاگل کہیں گے یا دانا سمجھیں گے؟ حضرت مسلم مولود نے فرمایا میرا جواب یہ ہے کہ اگر وہ لامتناہی سمندر میں سفر کر رہا ہے تو جہاں کنارہ سمجھ کے اترا وہیں ڈوبا اور اچانک وہ سمجھ گیا. جس مسئلے کا جواب اس کو اس دنیا میں کہیں نہیں ملا تھا وہ بے اختیار بول اٹھا کہ حل مسئلہ حل ہو گیا. وہ صوفیوں کا ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب خدا کو پا لیا تو عبادتوں کی کیا ضرورت ہے. خامخواہ پانچ وقت کی نمازیں اور شریعت کی پابندی, یہ چیزیں تو خدا کے حضور اس کی تلاش کے لیے ہیں. جب انہیں پا ہی لیا تو پھر کیا ہے؟ مگر حضرت مسلم مولود بات کو سمجھ گیا اور کیسا عمدہ جواب دیا کہ تم اس کو پانے کا دعویٰ کر رہے جو لامحدود ہے اور تم محدود ہو, اس لیے جہاں یہ دعویٰ کیا وہیں غرق ہو جاؤ گے. تو تکبر ہے جو انسان کو غرق کر دیتا ہے, اور تکبر بھی اندھیروں کی پیداوار ہے. کبیر کہلانے کا حق صرف اس کا ہے جو جانتا ہے. بس دیکھیں اس آیت کے ہر لفظ کو ہر لفظ کے ساتھ خدا نے ایسے رشتوں میں باندھا ہے کہ وہ ظاہری طور پر بھی دکھائی دیتے ہیں اور گہرائی میں بھی مسلسل چلتے ہیں. بس اگر تم کوئی بلندی چاہتے ہو, اگر عظمت چاہتے ہو تو اللہ کے علم میں غرق ہو جاؤ اور اس کے علم کو اپنا لو, اس کے علم کے سائے تلے چلو, تب تمہارے لیے بچنے کا امکان ہے اور پھر تمہاری حفاظت ہوگی. اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری نہ نیکی کی کوئی قیمت ہے نہ بدی کی کوئی حیثیت, سب کچھ خدا کی نظر میں برابر ہی ہیں. یکساں دنیاوی زندگی بسر کر رہے ہو, کبھی نیکی کے نام پر کبھی بدی کے شوق میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر فرماتے ہیں جب یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کامل طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ اسے ایک یکسافی تعلق پیدا ہوتا ہے, دنیا اور اس کی چیزیں اس کی نظر میں فنا ہو جاتی ہیں. یعنی اخفاء کی انتہا جو ہے یہ تبھی نصیب ہوتی ہے کہ سب دنیا نظر سے غائب ہو جائے, وہ دیکھ ہی نہ سکے. یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ وہ حالت تھی جس کو مسیح موعود نے پایا اور ایک اور سوال کے جواب میں اس کو ظاہر فرما دیا. یہاں غائبانہ حوالے سے باتیں کر رہے ہیں, اپنا مضمون نہیں بتا رہے ہیں. اس کو بھی اخفاء میں رکھا ہوا ہے کہ میں خود اس تجربے سے گزروں, میں جانتا ہوں کہ اس کے بغیر یہ بات نصیب ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کا تعلق اتنا بڑھ جائے اور اس کی ہمہ وقت حاضری اپنے سامنے, کہ آپ کی ہمہ وقت خدا کے حضور حاضری, یہ مضمون ساری زندگی کے ہر پہلو پر اتنا غالب آ جائے کہ باقی گویا کچھ بھی نہیں رہا, ہر دوسری چیز فنا ہو چکی ہے, پیچھے ہٹ گئی ہے. اس وقت پھر خدا تعالیٰ اس آخری مقام کی نیکی کی توفیق بخشتا ہے جو اسرار میں سب سے بڑھ کر سر ہے. یعنی دنیا سے چھپا ہوا اور خدا کے تعلق کا وہ سر جس کا اس بندے کے سوا جس کا خدا سے وہ تعلق ہے کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا. بس یہاں سر دو معنوں میں ہے, ایک یہ کہ دنیا کی نظر سے جب وہ غائب ہو جاتا ہے یا دنیا کو غائب کر دیتا ہے تو ایک راز ہے جو کسی کو معلوم ہو ہی نہیں سکتا, जिसने मसीह मौद अलैहिस्सलाम से भी अपनी नेकी छुपाई, जैसा कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अब उसके दिफा में बयान फरमा रहे हैं कि मैं उसके इस फेल को तकब्बुर नहीं समझता, बल्कि उसकी एक हालत है, और उस हालत के बगैर अगर ऐसा करोगे तो यह भी रियाकारी है और यह भी अपने नफ्स से छुपने की बात है। इसलिए तभी हालतों के साथ इन नेकियों को अदा करो, यह भी बड़ा जरूरी है। यानी कि आज मेरा खुतबा सुना तो कल मुझसे छुपा छुपा के करें और समझें कि आपने उस मुकाम को पा लिया है। किसी बुत बनाने से बुत की शक्ल का इंसान तो नहीं बन जाया करता। ये वो गहरी हकीकतें हैं जो जिंदा हकीकतें हैं। बुत बनाने से उन बुतों में जान नहीं पड़ सकती, इसलिए ये हकीकतें आपको भी तब जिंदा करेंगी अगर ये खुद जिंदा होंगी। तो जहां तकवा के साथ, सच्चाई के साथ, दिल का एक जज्बा मुख्तलिफ इम्कानात से गुजरता हुआ आखिर एक फैसले तक पहुंचता है, और वो एक ऐसे इख्वा का फैसला है जिसमें और कोई दुनिया का इंसान उससे बाखबर नहीं रहता, ये वो सिर है जो उसकी नेकी को हासिल हुआ, उस हर चीज से छुप गई। मगर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये उस शख्स को ज़ेबा है और उसी को इसकी तौफीक है जिसकी नजर में हमा वक्त खुदा मौजूद है। यह है वो अहम नुक्ता जिसको समझे बगैर आप इस नेकी की नकल भी मारेंगे तो नेकी को जाया कर देंगे। अगर इंसान कुल्लियतन अपनी नेकी को हर दूसरे वजूद से छुपा ले तो इससे बड़ा पागलपन कोई नहीं, सवाय इसके कि इस वजह से छुपाया गया हो कि जिसकी खातिर है, जो हम वक्त हाजिर है, उसकी नजर में आ चुकी है और मुझे कोई जरूरत नहीं कि अब कोई और उसको देखे या ना देखे। बस हमा वक्त खुदा की के वजूद का तसव्वुर और उसकी हाजिरी ही है जो सिर को नेकी बख्शती है, नेकी बना देती है। और ये सिर जब नेकी बनता है तो एक सिर नेहां बनकर जो अल्लाह के इश्क और अल्लाह की मोहब्बत का सिर है उसके दिल को रोशन कर देता है। अचानक इस सिर में से एक और सिर जाग उठता है, वो अल्लाह की ऐसी मोहब्बत का सिर है जो खुदा को उससे है, उसको खुदा से है, दुनिया में कोई फिर उसका शरीक नहीं होता। किसी को इल्म नहीं होता कि ये मोहब्बत कैसे पैदा हुई, क्या है, क्या उसकी हकीकत है और किस आली मर्तबे तक खुदा इस मोहब्बत के जरिए इसको पहुंचा देगा। तो ये जो सूरत हाल है ये चंद माली पैसों की कुर्बानी के ताल्लुक में बयान हो रही है, लेकिन आप देखें इसका कितना वसी मजमून है। जिंदगी की हर नेकी के साथ इसका ताल्लुक है, हर इंसानी जज्बे पर यह बात छाई हुई है। इसके साथ एक साफी ताल्लुक पैदा हो, उसके साथ एक साफी ताल्लुक पैदा होता ही है अल्फाज मुसलमान के। दुनिया और उसकी चीजें उसकी नजर में फना हो जाती हैं और अहले दुनिया की तारीफ और मजम्मत का उसे कोई ख्याल ही पैदा नहीं होता। यानी कि दिखावे की खातिर तारीफ से भी छुपता फिरता है। उसकी बला से हो रही है या नहीं हो रही, होती है तो माने कोई नहीं। साओकात ऐसा इंसान को तजुर्बा होता है, कोई शख्स जिसने किसी के साथ नेकी की हो, बाज़ दफा वो उसकी तारीफ में खत लिखता है, तो जिसने वाकईतन अल्लाह के लिए की होती है उसको परवाह कोई नहीं होती। वो अल्फाज उसके दिल में कोई किसी किस्म की भी तहरीक नहीं पैदा करते जो तारीफ को करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी तारीफ खुदा से वसूल कर चुका होता है। इसलिए दूसरी दफा वही सौदा किसी और को नहीं बेचता। तो इस तरह इंसान अपनी नेकियों पर नजर रख सकता है, जैसे मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बारीक बारीक मकामात पर नजर रखते हुए आपकी रहनुमाई फरमाई है। गलत बदियों के तर्क पर इस कदर नाज न करो, अब एक और मजमून शुरू हो गया है। गलत बदियों के तर्क पर इस कदर नाज न करो जब तक नेकियों को पूरे तौर पर अदा न करोगे। नेकियां भी ऐसी नेकियां जिनमें ना रिया की मिलौनी न हो, उस वक्त तक सुलूक की मंजिल तय नहीं होती। यानी बाज तर्क शर पर ही नाजा होते हैं, हमने फलां बदी छोड़ दी, हमने फलां बदी छोड़ दी। फलां बदी छोड़ना तो कोई हकीकत नहीं है, किस नेकी ने उस बदी की जगह ली है, यह है असल मज़मून। अगर आप सफाई करके बैठ जाएं और कुछ भी वहां ना लगाएं, वो खला के खला ही रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। सफाई इसलिए की जाती है कि गंदगी फेंकी जाए और अच्छी चीज उसकी जगह रखी जाए, या अच्छों को वहां आने की दावत दी जाए। तो अगर खाली सफाई है, ना अच्छा सामान, ना अच्छे आने वाले लोग, तो सफाई का क्या फायदा। फरमाया नेकियों से अपने दिलों को भरना, ये मकसद बनाओ। अगर नेकियों से दिलों को नहीं भरोगे तो सुलूक की कोई मंजिल तय नहीं होगी। तो बदियों का तर्क नेकियों के इस्तकबाल का जरिया है, और जब तक नेकियां हासिल ना हो, खुदा की तरफ आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने के लिए कोई कदम उठाने की तौफीक नहीं मिल सकती। आगे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, याद रखो रिया हसनात को ऐसे जला देती है जैसे आग खसो खाशाक को, और जो नेकियां हैं उनकी हिफाजत के लिए फिर एक और मुश्किल। बदियां दूर करो और नेकियां इख्तियार करो, और रिया का डाकू साथ साथ चल रहा है। हर कदम पर दिखावे का जो शैतान है वो इब्तला लेकर आता है। और मसीह मौऊद फरमाते हैं कि ये तो ऐसे है जैसे आग खुश घास फूस को आग दिखा दी जाए, उस तरह ये नेकियां जल जाती हैं। दरअसल इसमें एक और गहरा मजमून है, वो ये है कि नेकी जिसमें इसके साथ दिखाने की तमन्ना हो वो हरी होती ही नहीं, वो होती ही खुश घास की तरह है। और रिया बस वो तीली बनती है जो खुश घास फूस को दिखा दी जाती है, उसने तो भड़क नहीं है, उसके मुकद्दर में जल जाना है। वरना गीली नेकियों में गीली मिट्टी का मजमून पाया जाता है, उसके अंदर तरावत होती है और उसके साथ रोइदगी होती है, सब्जी उससे निकलती है, तो उसको तो तीली जला नहीं सकती। और तीली जलाने का दिमाग में तसव्वुर भी नहीं आता उसके साथ। बस वो जिसको लोग नेकी समझते हैं, अल्लाह ताला वक्तन फवक्तन उनके जलाने का इंतजाम भी करता रहता है, ये कानून कुदरत है। जैसे घास फूस इकट्ठा हो जाए ज्यादा किसी बाग में, तो माली एक तरफ करता चला जाता है, यहां तक कि फिर उस ढेर को एक दिन तीली दिखाकर उस फसल खाक से अपने चमन को पाक कर लेता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला के यहां नेकी का सफर करने वालों का हाल है, जो उनकी रिया की बातें हैं शैतान उनको तीली दिखा लगाता है, और वो जलकर खाक होकर जो अगर बाकी कोई नेकी रह गई है तो वही रखेंगी, बाकी सब बातें इस दुनिया में खाक होकर उड़ जाती हैं। तो कोई पता नहीं कि हम कितनी नेकियां लेकर खुदा के हुजूर हाजिर होंगे। अब इस मज़मून पर नजर रखें तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितने हमने फल फूल इकट्ठे किए बज़ाहिर, कितने ही सर्वसमन से अपने नेकी के चमन को सजाया और समझते ये रहे कि ये लहलहाता हुआ बाग है, लेकिन वो था खुश घास फूस, इससे ज्यादा उसकी कोई हकीकत नहीं, ये सूखी हुई टहनियां थी। और रिया के हर शैतान ने हर मौके पर उसे तीली दिखाई और आग लगा दी। और अगर आखिर पर जाकर ये आंख खुले और इंसान को पता चले कि मज़मून क्या है, तो मुड़कर देखेगा तो जले हुए चमन के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो इस हाल में खुदा के सामने पहुंचना है कि कुछ लेकर पहुंचे, और ये वो बात है जिसके लिए मुसलसल तैयारी हम वक्त निगरानी की जरूरत है। और वो जमात जो माली कुर्बानियों में इस कदर अजीम बुलंद मनाजिल तय कर रही है, उसके लिए तो और भी ज्यादा हिफाजत की जरूरत है। बस वो सारे जो खुदा की खातिर एक आना पेश करते हैं या करोड़ों रुपए पेश कर रहे हैं, वो अपनी कुर्बानियों की निगरानी करें, और इस निगरानी के ताल्लुक में जो तरीक मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सिखाया है उसके जरिए उनको बाकी नेकियों की हिफाजत की भी तौफीक मिलेगी। अल्लाह ताला हमें इस मज़मून को समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज चूंकि मैंने एक जमाती सफर पर जाना है, इसलिए नमाज जुमा के बाद असर की नमाज यहाँ जमा होगी इसके साथ ही।
الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر